से उठते हैं, कराची वाले, हैदराबाद वाले भी आमतौर बाद से नमाज़ पढ़ के सोते हैं। नमाज़ पढ़ के सोना जायज़ है, इफ़्राक़ के बाद सोए आदमी, ठीक है, और दिनों में मौका नहीं मिलता, एक दिन आराम कर ले। फिर ऐसे दिनों में बाद दफ़ा अहलिया मोहतरमाओं की भी छुट्टी होती है, नाश्ता बाहर से आएगा, जो फरमा बरदार शोहर होते हैं वो हलवा पूरी बाहर से लेके आते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। हमारे शेख फरमाते थे कि बीवियों की ज़ाहरी दिलजोई करो दुनिया के एतबार से, दीन में कंप्रोमाइज़ मत करो, पर्दा वगैरह, टीवी उसकी वजह से घर पे ना रहे, उसकी वजह से कोई बेवसूली दीन में ना हो, दुनिया में उसकी खूब खातिरदारी करो, पकाने का मूड नहीं है कोई बात नहीं, बाहर से ले आएंगे, 1,000 खताएं उसकी माफ़ करो, बीवियों की हज़ारों ख़ताओं को माफ़ करो, 1,000 पे भी बस नहीं, जिस दिन 1,000 हो गया 1,001 पे पिटाई शुरू हो गई, ऐसा भी नहीं, बस इतना है कि आदमी ये समझ ले कि हमारे शेख फरमाते थे हम अपनी बेटी के लिए क्या चाहते हैं, कि मेरी बेटी जहाँ जा रही है खैरियत से रहे, शोहर भी मोहब्बत करे, सास भी उसकी मोहब्बत करे और अच्छी तरह वो रहे, तो हर आदमी ये चाहता है, जिस तरह अपनी बेटी को चाहता है उसकी बीवी भी किसी की बेटी है, उसकी बीवी भी किसी की बेटी है, उसके साथ सख्ती करना किसी भी तरह ठीक नहीं है, खासकर अल्लाह ताला उसकी सिफारिश फरमाने, वआशिरुहुन्न बिलमारूफ, इनके साथ भलाई से पेश आओ, भलाई से पेश आओ, क्योंकि ये जहाँ किसी की बेटियाँ हैं हमारी बंदियाँ भी हैं। हमारे शेख फरमाते कि वज़ीरे आला अगर फ़ोन कर दे तुम्हारे घर में मेरी बेटी नहीं बल्कि मेरी बेटी की सहेली है, ज़रा होशियार रहना, कोई गुस्सा वुस्सा मत करना, तो हर वक्त उसकी तबीयत पूछता रहता सुबह शाम, कोई ऐसा ना हो कि कहीं शिकायत हो जाए तो सज़ा हो, वो तो हो भी सकता है वो शिकायत ना करे, हो सकता है उस तक बात ना पहुँचे, लेकिन अल्लाह ताला तो हर वक्त देख रहे हैं, जिसने सिफारिश की है आशिरुहुन्न बिलमारूफ वो देख रहा है, ज़रा ज़रा सी बात में लोग गालियाँ देने लगते हैं, सालन सही नहीं पका प्लेट फेंक दी, इसमें बीवी की भी बेकरामी है, रिस्क की भी बेकरामी, कितना बड़ा गुनाह है, नहीं समझ में आ रहा मत खाओ, भाई मुझे समझ में नहीं आ रहा, नमक तेज़ हो गया, इंसान है कभी दोहरा नमक पड़ जाता है। हज़रत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह ताला के सामने वो खादिम आया, तो उसने फिर कोई गलती कर दी, खादिम लोगों से गलती हो जाती। अब इससे पहले एक और किस्सा सुन लें, हदीस शरीफ में, आप लोग इतनी दूर क्यों बैठे हैं भाई, हम कराची से आए 150 किलोमीटर, आप बैठे रहे, पुरुष कुर्सी वाले बैठे रहे, बगैर कुर्सी वालों को करीब बुला रहा हूँ, कुर्सी वाले तो अच्छा है दूर रहेंगे तो बीच का मजमा सही रहेगा। तो मारूफुल हदीस में मौलाना मंजूर नौमानी साहब ये समझ रहे हैं, मिल के बैठने से मोहब्बत बढ़ती है, तलब का इजहार होता है, आवाज़ तो बाहर का स्पीकर खोल दें तो घर में भी चली जाएगी, लेकिन तलब नहीं है। मीडिया से फ़ायदा क्यों नहीं होता, मीडिया देखने वाले तलब से नहीं देखते, मीडिया में ऑल फॉल चीज़ें आती हैं, औरतें आती हैं, ऐसे लोगों को हिदायत मुश्किल से होती है, नेक माहौल में जुड़ने से हिदायत होती, जुड़ने का मतलब अच्छी तरह तलब से बैठ, ये ना देखें बात कौन कर रहा है, बात करने वाला बेहकीकत है, बात किसकी हो रही हो कितना बड़ा है, कितनी बड़ी ज़ात है अल्लाह रसूल की बात हो। तो हदीस शरीफ नकल की कि सहाबी हाजिर खिदमत हुए और उन्होंने अर्ज़ किया कि मेरा एक ग़ुलाम है और वो ऐसा है चंड पना करता है, कभी पैसा ज़्यादा ले लेता है, कभी वक्त बहुत लगाता है, इधर उधर बैठ जाता है, तो मुझे उस पर गुस्सा आता है, मैं उस पर बुरा भला कहता हूँ, बुरा भला कहता हूँ और बाद में मारता भी हूँ, क्योंकि ज़माने में ग़ुलामों को मारना, बीवियों तक को लोग मारते थे, नबी अलैहिस्सलाम ने आके मारने से मना फरमाया। आज भी गैर पढ़े लिखे लोग अक्सर गैर पढ़े लिखे और बाद में पढ़े लिखे भी गैर पढ़े लिखे बन जाते हैं जब गुस्सा आता है, वैसे बहुत अबाखलाफ गुस्सा आता है तो कुछ याद नहीं रहता, इसी की इसलाह हमें करवानी, वलकाज़िमीन अलग़ीज़, अल्लाह के ख़ास बंदे वो हैं जब उनको गुस्सा आता है गुस्से को पी जाते हैं, वलआदिमीन अलग़ीज़ नहीं फरमाया, कि उनको गुस्सा आता ही नहीं है। गुस्सा आता है कि अभी मुझे ऑफिस जाना है, अभी तक मेरी रोटी नहीं बनी, ऑफिस में जाके खा लेना। गुस्सा ना करो भाई, बता दे भाई मुझे इतने इतने वक्त में जाना है मुझे। लेकिन गुस्सा करना जो है उससे, और खासकर ऐसे पर गुस्सा जो बेचारी नाकिस अक़ल है, तो गुस्से भी हो, वो भी इत्तेदाल से, भाई ये क्या बात है, मुझे वक्त पे चीज़ नहीं मिलती, मुझे ऑफिस जाना होता। ये नहीं कि एकदम पागल हुए चले जा रहे हैं इसको, हर चीज़ में इत्तेदाल है। नबी अलैहिस्सलाम से जब सहाबी ने अर्ज़ किया मुझे कोई नसीहत फरमा दीजिए, आपने फरमाया ला तग़ज़ब, गुस्सा मत किया। और कोई नसीहत फरमा दीजिए या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने फरमाया ला तग़ज़ब, दोबारा गुस्सा मत किया, फिर फरमाया गुस्सा मत किया। मशायख़ पे बहुत से लोगों के हालात मुनकशिफ हो जाते हैं, तो नबी अलैहिस्सलाम से कैसे छुप सकते, तबीयत में बाद में गुस्सा होता है, गुस्से को जब्त करने से अल्लाह मिलेगा। वल्लज़ीना, वो अल्लाह ताला अपने प्यारों की, जन्नतियों की सिफात बयान कर रहे हैं, जब उनको गुस्सा आता है वो गुस्से को पी लेते हैं। والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس, حضرت حسین کے بیٹے, ان کا نام بھی حضرت علی, حضرت علی ابن حسین, پھر ابا کا نام پھر علی ہے, زمانے میں دادا کے نام پر پوتے کا نام رکھا جاتا, آج بھی رکھتے ہیں بعض, ابا کا انتقال ہو گیا تو بیٹے کا نام ابا کے نام پہ رکھ دیا, حضرت علی کے پوتے کا نام بھی حضرت علی ہے, وہ وضو فرما رہے ہیں, ان کی باندھی جو جائز ہوتی تھی اس زمانے میں, محرم ہوتی تھی, یہاں تک کہ قرآن کریم نے اس کی اجازت دی استعمال کی, تو اس وہ وضو کرا رہی تھی, اس وقت لوٹا جو ہے پلاسٹک کا نہیں ہوتا تھا, مٹی کے لوٹے ہوتے, وہ وضو کراتے ہوئے انسان ہے خاص طور پر عورت ہے, اس سے لوٹا چھوٹ گیا, سر پہ لگا کے خون نکل گیا, پھر بہت زخمی ہو گئے, موٹا لوٹا بھی بھاری, پانی بھی اس میں, ایک دم خونخوار نظروں سے دیکھا, یعنی غصہ تو آیا ایسے دیکھا ہوا, اس وہ حافظہ قرآن تھی ظالم, اس نے کہا والکاظمین الغیظ, آیت پڑھی, فا اللہ کے خاص بندے وہ ہیں جو غصے کو پی جاتے ہیں, حضرت علی جو حضرت علی کے پوتے ہیں وہ فرما رہے ہیں قد قد قضمت غیظی, تحقیق کہ میں اپنے غصے کو پی لیا, فوراً یہ نہیں کہ تو باندھی ہو کے مجھے نصیحت کر رہی ہے, تیری یہ مجال میرے سامنے, آج کوئی ہمیں نصیحت کرے ہم فوراً, حالانکہ صحیح بات کر رہا ہے اس کو نہیں مان, اندر کبر ہوتا ہے اس کو نہیں مان, اور یہ کبر نہ ہونے کی علامت ہے, کوئی دوسرا بھی نصیحت کرے تو ہاں جزاک اللہ بھائی, آپ نے آپ کا پانچا نیچے جا رہا ہے بھائی, آپ کا پانچا نیچے, بس تمہیں ہر وقت یہی فکر لگی رہتی, اگر کوئی سامان آپ کا ضائع ہو رہا ہے, آٹا چینی آپ لے کے جا رہے ہیں, تو اگر گر رہا ہے وہ اور وہاں تک گھر تک جا جائے سارا ختم ہو جائے گا, بیگ خالی ہو جائے گا, تو کوئی اگر توجہ دلا دے آپ کیا کہتے ہیں اس کو, برا بھلا کہتے ہیں, اور توجہ بھی بات ہے بڑے میاں سے, اوے دیکھتا نہیں اندھے تب گر رہا ہے تیرا سامان, تو بھی کہتے ہیں کہ آپ کو نصیحت کرنے کا شعور نہیں ہے, طریقہ نہیں ہے, مینرس نہیں ہے آپ کے اندر, یہ سب نہیں کہتے, بلکہ کہتے جزاک اللہ, تھینک یو, شکریہ کہ آپ نے میرے نقصان سے مجھے بچا لیا, تو پائچہ نیچے ہے تو بتا دیں, بھائی پائچہ آپ کا نیچے ہے یہ تو اوپر رکھنا واجب ہے, یا آپ کو پتہ نہیں چلا ہوگا اس لیے میں بتا دے رہا ہوں, ایک بزرگ نے دیکھتے تھے وہ, ان کے ساتھ ایک ساتھی رہتے تھے, ان کی پائچہ نیچے رہتا تھا, تو حضرت مدنی تھے یا حضرت نانوتوی تھے یہ بزرگ, انہوں نے اس کو کہا دیکھو بھائی ادھر آؤ, میرا میں بڈھا ہو گیا ہوں, میری تون نکل گئی ہے, تو بعض دفعہ میری شلوار نیچے ہو جاتی ہے ہزار, تو ایسا ہو جائے تو مجھے بتا دیا کرو, وہ سمجھ گیا کہ حضرت آپ کی کیوں ہوتی, میری ہی رہتی ہے, آپ معاف کر دیجیے, آئندہ نہیں کروں میں, یہ طریقہ ہے نصیحت, یہ طریقہ ہے, کوئی نصیحت کرے تو اس کو جزاک اللہ کہے, یہ نہیں کہ آؤ تمہیں ہر وقت نہیں رہتی, شکریہ ادا کریں, تو والکاظمین میں نصیحت کی, انہوں نے نصیحت فوراً قبول کر لی کہ تحقیق کے میں نے اپنے غصے کو پی لیا, اور حافظہ قرآن تھی نا اس کو آگے بھی یاد تھا, والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس, صرف غصے کو پیتے نہیں ہیں معاف بھی کر دیتے ہیں لوگوں, فرمایا قد عفوت عنکی, جہاں میں نے تجھے معاف بھی کیا, جہاں میں نے تجھے معاف بھی کر دیا, حضرت والا رحم اللہ تعالیٰ اس کو بار بار بیان فرماتے تھے ہمارے شیخ مرشد رحم اللہ تعالیٰ, پھر اس نے کہا واللہ یحب المحسنین, آخری جملہ بھی کہا, آخری جز, واللہ یحب المحسنین, اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو محبوب بنا لیتے, اپنا پیارا بنا, نیکوکاروں کو احسان, فرمایا جا میں نے تجھے آزاد بھی کر دیا, اتنے بڑے قصور کے وقت میں آزاد کیا جا رہا ہے, یہ کون سا دل ہے, یہ خون نبوت دوڑ رہا ہے ان کے اندر, یہ اصلی سید لوگ تھے, آج سید ہیں लेकिन चेहरे सुन्नतों से खाली हैं। मुझे मेरे उस्ताद ने बताया, जो डॉक्टर अब्दुल्हई आरफी रहमतुल्लाह ताला की खिदमत में रह चुके थे, और डॉक्टर अब्दुल्हई आरफी रहमतुल्लाह ताला हजरत वाला भी उनसे बहुत मोहब्बत करते थे, हजरत थानवी के खलीफा थे वो, और हजरत के आए भी थे, बयान भी फरमाया था उन्होंने, बहुत शफीक नरम दिल, कोई जलाली नहीं थे। लेकिन हमारे उस्ताद ने फरमाया, एक दिन मैंने उनको जलाल में देखा, दो आदमी आए उनके पास और दोनों मिले, क्या इसमें ग्रामी क्या नाम, एक सैयद फला फला फला, अब सैयद अब्दुल्ला अब्दुलरहमान, दुराना अब्दुलरहमान सिद्दीकी दूसरे ने, अब हजरत को जलाल आया कि आप लोग, और चेहरे बिल्कुल सुन्नत के खिलाफ, आप लोग नाम तो सैयद और सिद्दीकी रखते लेकिन अपने आबा अजदाद की कोई सुन्नत और कोई नजर आती चेहरे पर, कम अज कम जैसा नाम रखा है वैसा काम तो, जैसा नाम रखा है कि हम सैयद, सैयद दादा के मतलब क्या है, नबी अलैहिस्सलाम का, हजरत फातिमा का की औलाद है, नबी अलैहिस्सलाम की औलाद, तो उस औलाद को तो और ज्यादा फर्माबरदार होना चाहिए, औलाद है लेकिन चेहरे पे दाढ़ी नहीं, और एक मुट्ठी दाढ़ी रखना वाजिब है, इससे पहले कटा के बिला वजह का गुनाह ना करें, कोई मजा आता है कोई फायदा होता है, एक मुट्ठी दाढ़ी वाजिब है, इससे कम पे कटाना कतरवाना गुनाह है, गुनाह को गुनाह समझें कम से कम, अल्लाह से मांगे अल्लाह ताला हिम्मत और तौफीक दे, इंशाअल्लाह हम मांगे, और माहौल मुआशरे से न डरे, कल कोई काम नहीं आएगा, दबा के कब्र में सब चल दिए दुआ न सलाम, जरा सी देर में क्या हो गया जमाने को, कोई साथ जाएगा, जिसकी वजह से हम तैयार होते हैं, हैंडसम बनते हैं, हैंडसम। तो बहरहाल सहाबी हाजिर खिदमत हुए, उन्होंने कहा मेरा गुलाम है जो नालायक है, इस तरह बेउसूलियां करता है, पानी लो भी, बेउसूलियां करता है, और वो कभी देर से आता है, कभी पैसे में चोरी करता है, अल्हम्दुलिल्लाह, तो मुझे उस पर गुस्सा आता, मैं भी उसको बुरा भला कहता हूँ, गालियां देता हूँ, ऑल फॉल कहता हूँ, और मारता भी हूँ बाद दफा, तो मेरा क्या बनेगा, वो भी तो करता है गलत, तो यानी ये पूछने के लिए आए, सवाल करने के, वो भी गलत करता है, तो मेरा क्या बनेगा। आपने फरमाया कयामत के दिन उसकी बेउसूलियां और तुम्हारा जुल्म तौला जाएगा, फिर जिसका बढ़ जाएगा वो जालिम कहलाएगा, और जो जिसका कम हो जाएगा वो मजलूम रहेगा, उसको माफ कर दिया जाएगा, जालिम से हिसाब लिया जाएगा, उसकी नेकियां इसको दी जाएंगी। वो फौरन डर गए और एकदम शोर मचाने लगे, चिल्लाने लगे, मेरा क्या बनेगा मेरा, एक तरफ को जाके फिर आए और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप गवाह रहिए कि मैंने उस गुलाम को आजाद कर दिया, न रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी ऐसी, ऐसा जिसको जान दिल अजीज उसकी गली में जाए कि ये गुलाम तो मुझे जहन्नम में ले जा सकता है, लिहाजा मैंने उसको आजाद कर दिया, मैंने इसको आजाद कर दिया। आज हम कितना अपने नौकरों पर और दूसरों पर जुल्म करते हैं, नौकर तो नौकर, बीवियों पर बच्चों पर जुल्म करते हैं, अपने कुलीग जिसके साथ काम करते हैं उस पर, उसको उस पर साथ, या मातहत के साथ, मातहतों को नेक बनाना हमारे लिए है, उन पर गुस्सा करना नहीं, जब देखो गुस्सा कर रहे हैं, हज़रत फरमाते ज़्यादा गुस्सा करोगे कहेंगे या अल्लाह जल्दी से इसको बुला ले ताकि खस कम जहाँ पाक, और मोहब्बत से रखोगे तुम्हारी उम्र की ज़्यादती के लिए दुआ करेंगे कि अल्लाह या अल्लाह इसको साया रखिए, क्योंकि हमें कभी जेब खर्ची भी देता है, खुशी से अच्छी तरह बात करता है, माफ़ करता है, तो हम अगर हमारे अखलाक अच्छे होंगे दूसरों की दुआएं मिलेंगी, हमारा ही फायदा होगा, और अखलाक बुरे होंगे तो दूसरे दुआ करेंगे या अल्लाह इसका जल्दी से इसका डिपार्चर कर दे, जल्दी से दुनिया से जाए ताकि हमारी जान छूटे, क्या फ़ायदा हो। तो हज़रत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह ताला, जो हज़रत मौलाना सहारनपुरी रहमतुल्लाह ताला खिदमत में 35 साल जाना आना रहा, ये हमारे तमाम अकाबिर अपने अकाबिर से ताल्लुक़ रखते थे, क्या ताल्लुक़ था, इस्लाही ताल्लुक़, रिश्तेदारी नहीं थी, इस्लाही ताल्लुक किसको कहते हैं, इसलिए जाए और ये सब पूछे कि मेरे अंदर गुस्से का मर्ज है, मुझसे बदनिगाही नहीं छूट रही है। एक आदमी, एक जवान हजरत थानवी के पास आया और कहा कि मैं बदनिगाही का मरीज हूँ, मेरा इलाज कीजिए, किसी ने उसको भेजा था, तो हजरत थानवी फरमाए क्यों करते हो बदनिगाही, उसने कहा कि मैं एक दुकान, एक जगह जाता हूँ, उस जमाने में सेल्स गर्ल नहीं होती थी, लेकिन एक जगह मैं दूध लेने जाता हूँ तो वहाँ एक औरत है, उसको मैं देखता हूँ, उस ज़माने में उमूमी तौर पे तो औरतें बेपर्दा निकलती नहीं थी, और निकलती भी थी तो मेकअप वेकअप इतना नहीं था, तो मैं वहाँ जाता हूँ, वहाँ फरमाया वहाँ मत जाया करो, कहीं और से दूध ले लो, ज़रूरी है वहाँ जाना, ऐसी गुनाह के असबाब से भी दूर होना पड़ेगा, गुनाह के असबाब से भी, अगर मोबाइल से बचना मुमकिन नहीं है तो ऐसे मोबाइल को छोड़ दे, सादा मोबाइल ले ले, क्या हरज है, लेकिन अगर बच सकता है तो गुंजाइश है। तो हज़रत थानवी ने मारा कि वहाँ मत जाए करो, उसे कहा नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता कि वहाँ ना जाऊँ। तो हज़रत थानवी ने एक तमाचा लगाया, जब ऐसा नहीं हो सकता तो मेरे पास क्या लेने आया, चलो। उसने जिसने भेजा था ना उसको जाके शिकायत की, तुम्हारा शेख तो बड़ा जलाली, मैंने यूं कहा यूं कहा, तो उन्होंने एक तमाचा लगाया। लेकिन फिर कहा बात सही है कि जब से उन्होंने तमाचा लगाया मैं उस औरत के पास नहीं गया, मुझे उस औरत से नफरत हो गई। इन लोगों का तमाचा नफसानी नहीं होता था, रूहानी होता था। जब तो इलाज कर नहीं कराना चाहता, पहले ज़माने के हकीमों को भाई परहेज क्यों नहीं करते, ठंडा पानी नहीं छोड़ोगे तो हमें बदनाम मत करो, बहुत बुरा भला कहते थे, लेकिन वो सब नाज उठाते थे क्योंकि अगर इलाज नहीं कराएंगे तो मरेंगे। इसी तरह शेख भी अगर डांटता है तो क्यों डांटता है, अपने फ़ायदे के लिए, मुरीद के फ़ायदे के लिए डांटता है। सख्तियाँ शेख की हैं फना के लिए, मत समझ, मत समझ इसको हरगिज़ सितम, ये सितम नहीं है, हमारी इस्लाह के लिए। अगर हम सही नहीं हुए तो फिर बताइए, हमारे शेख फरमाते शेख का काम क्या होता है, एक जगह जा रहे थे हज़रत तो ब्यूटी पार्लर लिखा था, ये ब्यूटी पार्लर क्या हज़रत, उस ज़माने पता है नया नया खुल रहा था 30-40-50 साल पहले, ये क्या होता है, उस ज़माने तस्वीरें भी नहीं लगती, अब तस्वीर ज़रूर लगाते हैं औरतों की तस्वीर, तो भाई औरतों पे ब्यूटी पार्लर किया जाता है, भैंस पे तो किया नहीं जाता। क्या भी हुआ कि भैंस का ब्यूटी पार्लर हो रहा हो, मैं इसलिए बोलता हूँ कि दूध की दुकान में भैंस की तस्वीर, भाई भैंस की दूध, भैंस भैंस और गाय का ही दूध मिलता है, हिरन का तो दूध मिलता नहीं ना कुत्ते का मिलता है, तो तुम्हारा तस्वीर लगाना ज़रूर, तुम दूध की तस्वीर लगा दो कि दूध भाई ऊपर से गिर रहा है। हमारे बाद साथियों ने दुकान खोली, उन्होंने ये देखा ऐसे तस्वीर ली कि नीचे बड़ा टब रखा होता है जैसे, और ऊपर से दूध गिर रहा है, ये तस्वीर जायज़, भैंस की तस्वीर नाजायज़ है, जानदार की तस्वीर नाजायज़ है। मौलाना बहने बोली जो इख्तलाफ है वो सारा डिजिटल में है, असल तो वो भी सही नहीं है, लेकिन तस्वीर के प्रिंट पे आ जाने पे किसी का इख्तलाफ नहीं, नाजायज़ नाजायज़ है, बरकत नहीं होगी बल्कि नहुसत आएगी तस्वीर, बरकत नहीं होगी नहुसत आएगी। अब चाहे आजकल बिक्री नहीं है रिस्क में बरकत, बरकत कहाँ से, बरकत का दरवाज़ा तो तस्वीर लगा के आपने खुद बंद कर लिया, बरकत का दरवाज़ा तो खुद हमने बंद कर लिया, घर में तस्वीर लटकी हुई है। डॉक्टर साहब भी एक जगह ले गए, आरिफी रहमतुल्लाह ताला को हज़रत वाला से हमने सुना कि ले गए, और ले जाके वहाँ पे कहा गया था तो बहुत कितने दिन हो गए हमारी दादी की रूह नहीं निकल रही, आप ज़रा चल के दुआ कर दीजिए। हज़रत डॉक्टर साहब गए इधर उधर देखा तो लियाकत अली खान की तस्वीर लगी थी, हज़रत वर्मा ये क्यों लगाया हुआ, हाँ बस ये इसको निकालो, निकाला हज़रत डॉक्टर साहब ने सूरह यासीन पढ़ी और फ़ुरू निकल गई। रहमत के फरिश्ते आना थे, नहीं आ रहे थे, जहाँ पे तस्वीर होती है रहमत के फरिश्ते नहीं आते। अब जब दुकान आपने बाहर तस्वीर, आजकल एक अजीब स्टाइल, दीनदार लोग भी अपनी तस्वीर दुकान के पोस्टर पे लगाते हैं, कौन से सवाब का काम है, कौन सा अच्छा काम है, उनको बताना चाहिए कि आप बरकत चाहते हैं या नहुसत चाहते हैं, बरकत नहीं आएगी इससे, और बरकत गिनती का नाम नहीं है, बरकत नज़र नहीं आती, और इसमें आदमी खुश रहता है, उसको पूरा हो जाता है, डॉक्टर की फीस नहीं जाती, बेबरकती में ये होता है। तो हज़रत वाला रहमतुल्लाह ताला ने पूछा ब्यूटी पार्लर क्या चीज़ है, तो लोगों ने बताया हमारे जैसे मुरीद के हज़रत, उसमें लड़कियों को सजाया जाता है ताकि ताकि शौहर के शौहर खुश हो जाए देख के, और उस ज़माने में तो हल्का फुल्का होता था शायद गुंजाए, अब तो इतना होता है कि डिफेंस में एक लड़की को तैयार किया गया 10 साल पहले, 90,000 रुपये एक तैयार करने में आया, 90,000 एक दुल्हन तैयार करने। हमारे एक दोस्त ने कमेंट्स किया कि इतनी बदसूरत थी कि 90,000 रुपये दे के सही कराना पड़ा, और कितनी देर के लिए सही हुई बताइए, हमेशा ज़िंदगी भर के लिए सही हो जाएगी, सुबह को वही निकलेगा जो रात में था, सुबह वही निकलेगा ना जो रात में था, बताइए इतनी सी देर के लिए इतना ज़्यादा खर्चा, भाई घर में तैयार कर लें, ये वक्त तो वहाँ का माहौल सही नहीं होता, इसलिए कोशिश करें ये दीनदार लोग नमाजी लोग बैठे अपनी बच्चियों को घर में तैयार करें, कोई ऐसे बुला लें उसको बोले भी ठीक है तुम 2-4 हज़ार ले लो लेकिन घर में तैयार करो, अब वहाँ जाके बैठिए। मैं एक जगह मिलने गया रिश्तेदारों में, हमारे घर वालों की वो बहन है उसकी बेटी की शादी हुई, तो ऐसी शादी में तो जाते नहीं लिहाजा आगे पीछे जाना, हजरत ने फरमाया तो आगे पीछे जाया करो, हदिया भी दे दिया करो, ताकि ये ना समझे कंजूसी की वजह से नहीं आया, बल्कि इसलिए नहीं आया कि हम ऐसी जगह शरीक होंगे वहाँ सुन्नत और शरीयत के खिलाफ काम होता है, लिहाजा हम कहते शरीक हों। तो हम दूसरे दिन गए, वलीमा था उस दिन, तो वलीमे के लिए पता चला हम गए जोहर की नमाज़ पढ़ के, जोहर की नमाज़ पढ़ के कितना वक्त होता है, 5 थोड़ी बजते, 3 बजे 2:30 बजे हम पहुँच गए थे। जब वो घर वाले हमारे पहुँचे तो पता चला वो तो दुल्हन तैयार होने के लिए जा चुकी है, ढाई बजे जा चुकी है, वलीमा कब होगा? 7 बजे होता है कभी? 7-8 बजे खाना होता है, 10-11-12 बजे वलीमा होगा, और वो 2:30 बजे से जाके ब्यूटी पार्लर में बैठ रहे, नमाजें खूब पढ़ रही होगी, वहां पे तिलावत भी कर रही होगी, है ना? बताइए, शादी में नमाजें छोड़ देते हैं और मैयत में कुरान लेके बैठ जाते हैं शादी। अरे बहुत मसरूफियत चल रही है आजकल, जरा नमाज भी नहीं होना, नमाज कैसे छोड़ सकते? दुल्हन भी नमाज पढ़ेगी, दूल्हा भी नमाज पढ़ेगा, तब शादी होगी, वरना ये शादी का घर, शादी का मतलब खुशी, खुशी वो है जिसमें अल्लाह खुश है। खुशी मेरी अमाने दो जहां है, तेरे ताबे जमीन व आसमां है। हमारे वाला रहमतुल्लाह ताला का तारीखी जुमला है ये, फरमाया फरमाया कि जिस जमीन वाले को खुश रहना हो, कैसा मलफूज है गौर से सुनिए, जिस जमीन वाले को खुश रहना हो उसको चाहिए आसमान वाले को राजी रखे, खुश रखे, खुश रहेगा जमीन। हम अल्लाह को नाराज करते हैं, फिर कहते हैं पता नहीं, वो समझ में नहीं आता क्या हो रहा है, कौन हमारे साथ क्या कर रहा है, कोई कुछ नहीं कर रहा, हम खुद ही कर रहे हैं। हम तकवा अख्तियार कर लें, कोई हमारे साथ कुछ नहीं कर सकता। अल्लाह ताला लोगों के दिलों में मोहब्बत डाल देते हैं। बुखारी शरीफ की रिवायत है, जिस जो तकवा अख्तियार करता है, क्यों अल्लाह मोहब्बत करते हैं? गोरे रंग वाला इसलिए, गोरे रंग वाला तो अबू लहब था और काले रंग वाले हजरत बिलाल थे। अल्लाह किससे प्यार करते हैं? अबू लहब से। तो जिससे अल्लाह ताला प्यार करते हैं उसके तकवा की वजह से, उसके दीन की बरकत से, जिब्रील अमीन को हुक्म देते हैं तुम जाके बता दो कि मैं इससे मोहब्बत करता हूं, फरिश्तों में ऐलान कर दो कि तुम भी इस आदमी से मोहब्बत करो। बुखारी शरीफ की रिवायत है, कमजोर रिवायत नहीं, तुम भी फरिश्तों में ऐलान कर दो। फरिश्ते जमीन पर ऐलान करते हैं, उसका यह असर होता है कि लोग कहां कहां से उसके पास आते हैं, उसकी जूतियां सीधी करते हैं। तो हम अल्लाह वाले बने, कोई इंशाल्लाह नुकसान नहीं पहुंचाएगा, बल्कि लोग हम वो लोग खिदमत को अपना खिदमत करने को अपनी सआदत समझेंगे। तो अपनी बेटियों को बजाय ब्यूटी पार्लर भेजने के घर में तैयार करें। तो जो सही है वो 1-2 हज़ार और घर में तैयार होकर सही, जो सही नहीं है वो कहीं जाके भी दूसरे दिन तो वैसी की वैसी रहेगी। फ़ायदा क्या है? फजूल खर्ची है। वला तुबज़िर तबज़ीरा, फजूल खर्ची मत करो, इन्नल मुबज़्ज़िरीन कानू इख़वान शयातीन, फजूल खर्ची करने वाले शयातीन के भाई हैं। ये समझ, शैतान का भाई कैसा होता है? शैतान का भाई कौन होगा? अब्दुर्रहमान हो सकता है, शैतान का भाई भी शैतान ही होगा। यानी इतना बड़ा गुनाह है कि फजूल खर्ची। हज़रत मुफ्ती शफी साहब ने इस आयत के ज़ेल में लिखा है, उस ज़माने में 1 रुपया, आज 100 रुपये रख, 1 रुपया भी जो बेमकसद खर्च, ढोल ढमक्के में खर्च हो रहा है, आतिशबाजी में खर्च हो रहा है, ये भी फजूल खर्ची है। टीवी में और ऐसे मोबाइल में जिसकी वजह से तस्वीर बहुत साफ आती है, इसलिए मैंने लिया तस्वीर बहुत, 1.5 लाख का मोबाइल, 2 लाख का मोबाइल। अभी कराची में एक साहब 2.25 लाख का मोबाइल लेके घूम रहे थे, कराची में तो आए दिन झपटा झपटी होती रहती, 2.25 लाख का मोबाइल लेके चला गया। क्यों लेके घूम रहे थे? क्यों लिया था? हो गया नुकसान, हो गया, क्यों लिया था? ये ऐसा, अगर पैसा सिर्फ उसके लिए ज़ाया किया जा रहा है कि तस्वीर के लिए, तो ये नाजायज। हाँ, ज़रूरत के लिए कोई हर्ज नहीं, ज़रूरत के लिए आदमी बड़ी गाड़ी लेता है, 1-1 करोड़ की आजकल गाड़ी है, ज़रूरत है। लेकिन ज़रूरत नहीं हो तो 100 रुपये खर्च करना भी गुनाह है, आतिशबाजी पे, ऑल फॉल चीज़ों पर, दाढ़ी मुंडाने पर जो पैसा जाता है ये भी गुनाह है। पूछ लीजिए अहले इल्म से, मैं जज्बात में नहीं हूँ, मौलाना बैठे हैं। मुफ्ती तकी साहब ने फतावा उस्मानिया में लिखा है, एक सवाल के जवाब में जब उसने पूछा क्या हिंदू की दाढ़ी मूंढना भी नाजायज़ है, फरमाया हाँ, हिंदू की दाढ़ी मूंढना भी नाजायज़ है, क्योंकि इस्लाम ने दाढ़ी को शियार बताया है, फितरत बताया है। हिंदू की दाढ़ी भी मुसलमान के लिए जायज़ नहीं है वो मूंढे। ये मुफ्ती तकी साहब का फतवा है, जो इतने नरम आदमी हैं, और फतावा उस्मानिया में मैंने खुद पढ़ा, कोई तीसरा रावी नहीं है। तो ये पैसा कहाँ जा रहा है? ये इसराफ में जा रहा है, गुनाह हो रहा है। तो बहरहाल हजरत वाला ने जब पूछा भी, हमने बताया, हजरत फरमाया ब्यूटी पार्लर यानी दुल्हन को तैयार करके दूल्हा को ताकि खुश हो जाए। हजरत फरमाया यही काम औलिया अल्लाह का है, यही काम औलिया अल्लाह का है कि वो बंदों को तैयार करते हैं सुन्नत और शरीयत के मुताबिक, और मरने के बाद अल्लाह के सामने पेश कर देते हैं ताकि अल्लाह खुश हो जाए थे। यही काम है ना, ताकि उनको तैयार करते हैं, सुन्नत और शरीयत के सांचे में ढालते हैं, फिर उसको पेश कर देते हैं कि अल्लाह देख कर खुश हो जाए। और ये हमेशा की कामयाबी, ज़ालिकल फौज़ुल अज़ीम, ये हमेशा की कामयाबी है, ये हमेशा की कामयाबी। हज़रत मौलवी याज़ साहब रहमतुल्लाह ताला, पानी लाओ भाई, वो तो लिख रहा है पता नहीं, तो तुम एक काम करो, या तो इधर बैठो या उधर बैठो। हम सभी जज़ो कैफ में रहेंगे तो काम हो चुका। इलियास साहब रहमतुल्लाह ताला ने खादिम को डांटा और को ये बार बार तू ऐसा करता है, इतनी दफ़ा ये गलती कर चुका है। हज़रत इलियास साहब, हज़रत शेख ने डांटा, मौलाना ज़करिया साहब खुद लिखते हैं, आप बीती में मैंने डांटा। मौलाना ज़करिया साहब कौन है? हज़रत इलियास साहब के भतीजे, उन्होंने डांटा। तो हज़रत इलियास साहब बैठे थे क्योंकि वो चाचा भी थे और बड़े ताल्लुक वाले थे, अल्लाह वाले थे। तो जब वो चला गया तो वो कहने लगे, बार बार तू ये गलती करता, मैं तेरा कितना भुगतूँ, यानी कितना बर्दाश्त करूँ। जब वो चला गया, उसके सामने नहीं, किसी ऐसे सामने नसीहत करने से वो और ख़राब हो जाएगा। वो चला गया, फिर फरमाया, मौलाना ज़करिया, मौलवी ज़करिया, इतनी बर्दाश्त करो, इतना भुगत लो जितना अपनी भुगतवानी है वहाँ पर, इतना माफ़ करो जितनी अपनी माफ़ करानी है। नहीं, बात लिखी है ताकि दूसरों को नसीहत हो कि हमें भी तो वहाँ माफ़ी चाहिए अल्लाह ताला से, हम दूसरों को माफ़ करें, अल्लाह ताला वहाँ हमें माफ़ फरमाएं। तो बहरहाल ये बात संडे पे आ गई थी, हालांकि मेरे जहन में एक बात थी कि जुमे को तो यहाँ आना होता नहीं, जुमे की कुछ ख़ास आमाल हैं उसको बयान कर दूँ, इंशाल्लाह इशराक से पहले हम आपको फारिग कर देंगे, क्योंकि ताकि हम भी वक्त पर पहुँच जाएँ, फिर 11-12 बजे बयान। तो जुमे के दिन कुछ खास है, दुरूद शरीफ का अहतमाम ज़्यादा, आम दिनों में 100 मरतबा तो पढ़ते होंगे ना, मैं अच्छा गुमान करता हूँ पढ़ते हैं मुल्ला, लेकिन पाबंदी नहीं होती, कभी पढ़ा तो बहुत पढ़ा। 100 मरतबा रोज़ाना दुरूद शरीफ का अहतमाम, ला इलाहा इल्लल्लाह की एक तस्बीह रोज़ाना, इस्तग़फार की एक तस्बीह रोज़ाना रोज़ाना, और जुमे के दिन 300 मरतबा दुरूद शरीफ, क्योंकि फरमाया ज़्यादा दुरूद शरीफ पढ़ा करो, 100 की जगह 300 हो जाए और 1000 हो जाए तो नूरुन आला नूर है, बहुत ज़्यादा। आप कितने मसरूफ़ हैं, किसी कोई वज़ीर आला बैठा है यहाँ पे, कोई गवर्नर बैठा है, आम लोग हैं ज़ाहिर सी बात वक्त निकाल ही लेते, लेकिन अल्लाह अगर अल्लाह से मोहब्बत हो जाए, अल्लाह के महबूब से मोहब्बत हो जाए, तो सुल्तान नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह ताला के बारे में लिखा है, रोज़ाना 1000 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ते। सुल्तान थे, इतनी बड़ी ममलकत के अमीर थे, रोज़ाना 1000 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ते थे। और खानी हनीफ मुल्तानी साहब रहमतुल्लाह ताला का बयान मैंने सुना, फरमाए कि एक दिन जो है वो बहुत मसरूफ़ थे, जिहाद की मसरूफियत में, मोबाइल नहीं चला रहे थे और फोन नहीं करते थे, 700 साल पहले के लोग हैं, मोबाइल था उस ज़माने में, यानी मसरूफियत जिहाद में थे। 300 मरतबा पढ़ा, 700 मरतबा रह गया, ख्वाब में नबी अलैहिस्सलाम की ज़ियारत हो गई, आप तशरीफ़ लाए और पूछा, नूरुद्दीन आज हमारा तोहफ़ा पूरा नहीं पहुँचा, आज हमारा तोहफ़ा जिसका कबूल होता है उसको बताया जाता है, कबूल होता है इंशाअल्लाह। आपने फरमाया जब तुम दुरूद भेजोगे तो मेरे पास फरिश्ता लेकर आता है, जिसको दरबार में यहाँ से बैठे बैठे हाज़िरी चाहिए दुरूद शरीफ पढ़े, जो दुरूद शरीफ पढ़ता है फरिश्ते उसको लेके जाके आपको पेश करते हैं, याद हमारी हाज़िरी हो जाएगी, जब उम्रा नसीब होगा ज़रूर होगा इंशाअल्लाह, बार बार मांगे, उम्रा भी मांगे, हज भी मांगे, लोग कैसे मांगते, या अल्लाह एक बार दिखा दे अपना घर, एक बार क्यों, अल्लाह ताला के कमी है क्या, अल्लाह ताला से कम मांगना अल्लाह ताला की शान के खिलाफ, बार बार मांगे, अल्लाह उम्रा भी बार बार, हज भी हर साल दीजिए, मांगे तो सही, या तो मिलेगा या तो उसका नेमुल बदल मिलेगा। और जितनी दुआएं आदमी मांगता है, अगर कबूलियत का जहूर ना भी हुआ, सबका अजर व सवाब वहाँ इतना मिलेगा कि आदमी तमन्ना करेगा कि काश मेरी कोई दुआ कबूल ना होती, ताकि सबका अजर वहाँ मिलता। मांगने की आदत डालें, आज नमाजी लोग नमाज पढ़े इधर उधर देखा रब बना देना फिर दुनिया से ना तो चुट के चले, ये मांगने का 5-7 मिनट नफ्स को पाबंद करें, मुझे दुआ मांगनी है, दुआ मांगना इबादत, अदुआ मुखुल इबादत, दुआ इबादत का मग़्ज़ है, अदुआ हुवल इबादत, दुआ ही इबादत है, दुआ ही इबादत है, मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है और फरमाया हर दुआ इबादत है और हर इबादत दुआ है। क्या बात है, क्यों है ये बात, हर इबादत दुआ है, क्यों, इबादत का मकसद क्या, अल्लाह को राज़ी करना, और अल्लाह को राज़ी क्यों करते, ताकि अल्लाह माफ़ कर दे और अल्लाह ताला वहाँ पर अजर अज़ीम अता फरमाए। तो दुआ मांगने का मामूल बनाए, रोज़ाना 5 मिनट हर नमाज के बाद मांगेंगे तो 5 नमाजें हैं ना, और भी बढ़ा लें नमाजें, 6 नमाजें कर लें, तहज्जुद आजकल रात इतनी बड़ी है, 5 बजे उठ जाएं, नहीं तो आखिर रात में, शुरू रात में पढ़ लें, चलो भाई कोई नहीं उठ सकता वो ईशा के बाद पढ़ ले, और बाद वहाँ भी पढ़ लिया फरमाते दाल रोटी चटनी रोटी खा के सो, चार रकत पढ़ के, दो सलाते हाजात दो सलाते तौबा पढ़ के और फिर दुआ मांग के सो, और फिर आखिर रात में आँख खुल जाए तो कौरमा बिरयानी फिर खाओ, साढ़े चार पौने पाँच बजे आँख खुल जाए तो फिर अल्लाह से मांगो कि अल्लाह, बस ये तो मांगने के लिए आदमी अपना फ़ायदा है इसमें, अल्लाह ताला क्या फ़ायदा। एक हमारा दोस्त था कहता था मेरा नाम लेके, बहुत पुराना उस जमाने मुझे इजाज़त भी नहीं मिली थी नौजवानी की बात, शाहिन भाई उस हुस्न ज़न रखता था, उस वक्त में मेरे लिए दुआ करना जब रश का टाइम ना हो, जब रश का टाइम ना हो, कौन सा टाइम होता है शहर में रश नहीं होता, अब क्या जब हमें आपको कोई किसी बड़े आदमी से कुछ मांगना होता है तो आदमी रश में नहीं जाता, तन्हाई में जाता, ज़रा मेरा ये काम खास है, बेटी की शादी है, ज़रा ज़्यादा पैसा चाहिए, वरना रश में वो नहीं सुनेगा। तो अल्लाह ताला के उस वक्त में लोग कम होते हैं, अक्सर सो रहे होते हैं, लिहाजा उस वक्त में अल्लाह ताला पूरी तवज्जो फरमाते हैं, है कोई मांगने वाला मैं उसको अता करूं, लेकिन हम तो घोड़े बेच के सोते हैं और बाद अस्तबल बेच देते हैं। तो जुमे के दिन खास कर दुरूद शरीफ का अहतमाम, सूरह कहफ़ का अहतमाम, सूरह कहफ़ की 10 आयात हज़रत शेख हज़रत मौलाना ज़करिया साहब हज़रत मौलाना मुफ्ती शफी साहब ने मारिफुल कुरान में लिखा है, मुस्लिम शरीफ की रिवायत दूसरी दो हदीसों की वो लिखा है, जो शुरू की 10 आयात याद कर ले, जो आखिरी के 10 आयात याद कर ले, उसके लिए क़यामत से नूर होगा कदम से लेके आसमान तक, जिसको नूर होगा वहाँ नार आ सकती है बताइए, जो नूर में रहेगा नार उसको छू भी नहीं सकती, देख भी नहीं सकती इंशाअल्लाह। और दूसरी रिवायत में है कि जो सूरह काफ जुमे को पढ़ लेगा अगले जुमे तक तमाम फितनों से शरूर से महफूज रहेगा और दज्जाल के फितनों से महफूज रहेगा। कितनी बड़ी सूरत है, सुबहान अल्लज़ी में है, 15वें पारे से शुरू होकर 16वें पारे में ख़त्म हो रही है, अक्सर लोग जानते हैं, अहतमाम पर कह रहा हूँ, फजर के बाद पढ़ लें, जुमे से पहले आ जाएं, आधा घंटा पहले आके पढ़ लें, हम लोग बस बैठे रहते हैं जब इमाम का बयान ख़त्म होने लगेगा फिर जाएंगे, इमाम साहब तो वही कहते रहते हैं, एक ही कहानी है उनकी, भाई थोड़ा बैठ जाओ नेक माहौल में, हो सकता है कोई काम की बात पता चल जाए, थोड़ा इमाम पहले से आके बैठे और पहले आके आदमी तलावत कर ले, अगर मौका है जवाल का वक्त नहीं सलात तस्बीह पढ़, सूरह कहफ़ में आप सूरह कहफ़ की तफसीर इमाम साहब से कहिए वो बयान करें, जो किसी के से भी कहिए बयान करें, कैसे देखिए वो चंद जवान थे वो एक जगह जमा हुए, उन्होंने देख लिया कि हमारी कौम तो सही काम नहीं कर रही, बुतों की पूजा करती है, चढ़ावे देती है गैरुल्लाह के नाम के और गैरुल्लाह को सजदा करती है, लिहाजा वो सब एक जगह जमा हुए, 6 आदमी थे वो इधर इधर से आ गए, मैं भी ये समझता हूँ सही नहीं हुई, फिर वो छुप के उनके साथ एक और आ गया चरवाहा, उसी के साथ वो कुत्ता था, कल्ब हम बासतुम ज़राही बिल वसीद, असहाब कहफ़ के साथ नहीं था, असहाब कहफ़ जब चले ना रास्ते में वो चरवाहा मिला तो वो उस पूछने कहाँ जा रहे हो, तो उन्होंने ज़रा छुपाया, कहीं पता चले ये CID का आदमी हो, और जाके बादशाह इतना ज़ालिम था कि वो ये नहीं, वो कोई जिहाद करने नहीं चले थे जो उनको बादशाह पीछे पड़ गया, वो सिर्फ मुवाहिद बन गए थे, वो अंबिया नहीं थे, सिर्फ तौहीद परस्त बन गए थे, एक अलग हो को इबादत करना चाहते थे, बादशाह ने उसको भी इबादत भी नहीं करने दी, इसको कहते हैं काफिर जालिम होता है, जैसे आज आप देख रहे हैं औरतों और बच्चों को शहीद किया जा रहा है, तुम्हें लड़ना है तो तुम लड़ने वालों से आके लड़ो, लड़ाई इसको कहते हैं लड़ने वालों से लड़ो, और औरतों बच्चों पर जुल्म करना ये बुजदिली है, ये बहादुरी नहीं है। हज़रत थानी फरमाते हैं मुसलमान बहादुर होता है और बहादुर माफ़ करने वाला होता है, और काफिर बुज़दिल होता है, वो इंतकाम की आग में अंधा हो जाता है, वो इंतकाम की आग में अंधा। तो बादशाह को जब पता चला कि ये कुछ ऐसे लोग हो गए, उनको बुलाया और बुलाया क्या तुम लोग क्या करते हो, ये कौन, तुम अंधे के खुदा को मानते हो, मैं खुदा हूँ या ये बुत है, ये इनको मानो। तो अल्लाह ताला देखिए मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि वह असहाब कहफ़ अंबिया नहीं थे, लेकिन ताल्लुक़ मा अल्लाह जो अभी उनको अता हुआ था इतना मजबूत, व रबअना अला क़ुलूबिहिम, हमने उनका दिल मजबूत कर दिया, दिल से राबता था, व रबअना अला क़ुलूबिहिम इज़ क़ामू फ़क़ालू रब्बुना रब्बुस समावाति वल अर्द, वो बिल्कुल धड़ल्ले से कह रहा है हम तो उस रब को मानते हैं जो ज़मीन और आसमान का खालिक, जो उसका पालने वाला है उसको मानते, लन नदवा हम उसके सिवा किसी को नहीं पुकारते, हम उसके सिवा किसी को नहीं पुकारते। अब वो जालिम तो था, वो उसको मानता क्या, वो कह रहा अगर तुमने ये नहीं छोड़ा तो हम तुम्हें कत्ल करा देंगे, क्योंकि तुम जवान हो, एक मौका दिया जा रहा है कि तुम इसको छोड़ दो सही हो जाओ। तो उनको फिर जब मौका दिया गया फिर मौके से फ़ायदा उठा के जाके वो गार में, कहफ़ कहते हैं गार को, बड़े गार में जाके छुप गए वहाँ ताकि इबादत करें। अल्लाह ताला ने वहाँ उन पर नींद, हमने उनके कानों को थपक दिया, नींद तारी कर दी, कितना सोए, 300 साल, और फिर रिवायत 309 साल तक सोते रहे, और फिर अल्लाह ताला, और उसी हालत में अल्लाह ताला करवटें भी बदलते थे, अल्लाह ताला ने उनको 309 साल बाद बेदार किया। कहने का मकसद ये, पूरी तफसीर थोड़ी पढ़ा सकता हूँ ना बता सकता हूँ ना ये इतना वक्त है, कहने का मकसद एक नया ईमान वाला ऐसे धड़ल्ले से बात कर रहा है, हम लोग मुसलमान पैदा हुए हमारे ईमान का क्या हाल। वो बनी इसराइल के लोग जो मूसा अलैहिस्सलाम की के हालात पर फौरन मुसलमान हो गए, उन्होंने देख लिया कि ये जादू जो हमने किया इतना बड़ा जादू नहीं हो सकता कि सारे सांपों को निकल जाए, लिहाजा उन्होंने फौरन कहा कि हम ईमान लाए मूसा और हारून के रब पर। बस फिरौन फौरन बिगड़ गया, मैं तुम्हें अजाब दूंगा, लौसल्लिबन्नकुम, मैं तुम्हें सलीब चढ़ाऊंगा, एक हाथ कटवा दूंगा, एक पैर कटवा दूंगा, सूली पे लटका दूंगा। अब उनका जवाब सुनिए, फ़क़्ज़िमान तक़ाल, कर ले जो कर सकता है, कर ले जो कर सकता है। इतना ताज़ा ईमान, इतना पक्का ईमान, हमारा इतना पुराना ईमान जैसे दिलमुल यकीन, कहीं हम मर ना जाए। हुब दुनिया व कराहियतुल मौत, दुनिया की मोहब्बत और मरने का खौफ, ये यहूदी में होता है, मुसलमान में नहीं होना चाहिए। मुसलमान तो फना फिल्लाह की तह में खुदी का राज मुजमर है, जिसे मरना नहीं आता उसे जीना नहीं आता। जब अब तक डरते रहेंगे ये हालत रहेगी। दुआ तो हम कर रहे हैं, मौलाना भी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, लेकिन मरीज मर रहा है हम दुआ कर रहे हैं ये काफी, उसको अस्पताल तो ले जाओ कम अज कम, उसके तदबीर करो, तदबीर हम लोग नहीं कर रहे हैं, सिर्फ दुआ कर रहे हैं। इंतहाई बेबसी का आलम है, हम ना हम कर रहे हैं ना हमारे रहनुमा कर रहे हैं। लिहाजा हमें अल्लाह से ऐसा मांगना चाहिए, अल्लाह ऐसे हालात अता फरमाइए कि मुसलमान मुत्तहिद हो जाएं, एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए, हरम के करीब ही तो हैं ये सारे हालात, एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए। नील के साहिल से लेकर ताब खाके काशगर, नील के एक एक लड़की ने लिखा था खत, हज्जाज इब्ने यूसुफ ने, ये सिंध से लिखा था, हज्जाज इब्ने यूसुफ ने अबी कासिम को भेजा था, आज सिंध बाबुल इस्लाम है। हम कितने लोग परेशान हैं और कितने लोग रोजाना कत्ल हो रहे हैं, हमने क्या किया इसके लिए। बात वही है, वैसा ईमान और यकीन, उसका कोई जर्रा अल्लाह ताला हमें अता फरमा दे। इकबाल कहते हैं, मगर मैं क्या कहूँ तुझसे कि वो सहरा नशी क्या थे, सहरा में रहने वाले, वो ऊंट चराने वाले, अल्लाह ताला ने उनको अमीरुल मोमिनीन बना दिया और दिखा भी दिया अमीरुल मोमिनीन कैसा होता है। मगर मैं क्या कहूँ तुझसे, सहरा नशी क्या थे, जहांगीरो जहांदारो जहां बानो जहां आरा, जहांगीरो जहांदारो जहां बानो जहां आरा, हमें आबा से अपने कोई निस्बत हो नहीं सकती कि अब तुझे आबा से अपने कोई निस्बत हो नहीं सकती कि तू गुफ्तार वो किरदार, तू साबित वो सैयार, कि तू गुफ्तार, हमसे बातें करते हैं अभी बहुत बुरा हो रहा है, सही नहीं हो रहा है, कि तू गुफ्तार वो किरदार, तू साबित वो सैयारा। गवा दी हमने जो असलाफ से मीरास पाई थी, सुरैया से जमी पर आसमान ने हमको दे मारा, क्यों हुआ ये, हमने अल्लाह के दीन को छोड़ दिया, अल्लाह की रस्सी को मजबूत पकड़ना छोड़ दिया। आज भी अगर हम तवज्जो करें, और सिर्फ ये मेरा और हमारा नहीं बल्कि सारी उम्मत का मसला है, याद हम इस बात को आगे पहुंचाएं कि उम्मत दोबारा कैसे खुशहाल हो सकती है, इसी तरह कि हम अल्लाह को राज़ी करें, सब मुसलमान अल्लाह वाले बन जाएं, जितना मजमा जुमे में आता है इतना फजर में आने लगे, हालात तब्दील हो जाए। फजर का मजमा अलग, मगरिब का अलग, मगरिब में भी ज़्यादा होते हैं, फजर में कम होते, जुमे का उससे ज़्यादा, ईद का उससे ज़्यादा, बस यही है, ईद ईद। बाज़े 8 के नमाजी होते हैं, बाज़े 360 के, बाज़े खाट के, बस जान जनाजा आ गया, कहाँ चले गए, मुसलमानों में खूब बाकी नहीं है, मोहब्बत का जुनू बाकी नहीं है। अखबार है भाई अखबार, मोहब्बत का जुनू बाकी नहीं है, सफ़े कज दिल परेशान सजदा बेज़ौक के जज्बे अंदरू बाकी नहीं, उस जज्बे अंदरू को पैदा करने की ज़रूरत है। लिहाजा कुरान के पढ़ने से ये पता चले कैसे कहें, इन्नल्लज़ीना क़ालू, जो मैंने आयत तिलावत यही है, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह, जिन्होंने कहा कि हमारा रब सिर्फ अल्लाह है, रब्बुनल्लाह हमारा रब सिर्फ अल्लाह है, तुम इस्तक़ामू, फिर उस पर डट गए, ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, फिर फरिश्ते नाज़िल, सहाबा के दौर में फरिश्ते नाज़िल हुए, और जो वो ऐसा आदमी जो ईमान कामिल लेके जाएगा उस वक्त भी फरिश्ते नाजिल होंगे, कब्र में जाएगा उस वक्त भी फरिश्ते आएंगे। नहनु औलियाकुम, हम तुम्हारे दोस्त हैं, तुम परेशान ना हो, हम जैसे पासपोर्ट ऑफिस जाएं कोई पुराना दोस्त मिल जाए, अफसर भी हो, अरे आओ चलो मेरे साथ चलो, वो एकदम अंदर तक ले जाए, ना लाइन लगानी पड़े ना कुछ, نحنو اولیاکم فی الحیات الدنیا و فی الاخرہ، ہم تمہارے دنیا میں بھی دوست ہیں، یہاں بھی دوست ہیں، وہاں بھی جب خبر سے اٹھ کے جائے گا وہاں بھی فرشتے آ جائیں گے. مفتی شفیع صاحب نے لکھا تینوں جگہ پہ یہ چیزیں ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا ایمان و یقین عطا فرمائے کہ ہمیں جو ہے یہ سب وہاں پہ کام آسان ہو جائے. کام آسان کرنا، مشکل کرنا ہمارے اختیار میں، یہاں پہ ہم سمجھتے ہیں بہت مشکل ہے. مشکل اس لیے ہے کہ ہم نے نیک ماحول اختیار نہیں کیا، کوئی اللہ والا ہمیں نہیں ملا. نہیں ملا تو مولانا سے پوچھئے، جو جاتے ہیں ان سے پوچھئے کہ آپ کیسے اللہ والے بنے. ہم یہ پوچھتے بھی نہیں، کہیں یہ بھی لے ہی نہ جائے ہمیں اپنا پیر سے مرید نہ کرائے. ارے بھی پوچھیں اور ان کے صحبت میں بیٹھیں، پھر انشاءاللہ ہمت آئے گی، کمک ملے گی. اور پھر اللہ تعالیٰ، ہمارے شیخ فرماتے تھے کہ بعض کتے پہ نظر پڑ گئی، کتا بھی کتوں میں جاتا تھا، دوسرے کتے اس کی عزت کرتے تھے. یہ اصحاب کاف کے ساتھ کتا تھا نا، آخری باتیں عرض کر رہا ہوں، اصحاب کاف کے ساتھ کتا تھا، کیا ہوا؟ وہ کتا کلبہم، اللہ تعالیٰ اس کو قرآن میں نازل کر رہے ہیں کلبہم، اس پر 550 نیکیاں ملیں گی اور یہ کتا بھی جنت میں جائے گا. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ روایت ہے کہ 10 جانور جنت میں جائیں گے، ناقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام کی اونٹنی جنت میں جائے گی، سلیمان علیہ السلام کا ہدہد جنت میں جائے گا، اور بہت سے جانور من جملہ ان کے یہ کتا بھی جنت میں جائے گا جو وقت کے انبیاء نہیں صرف موحدین اور اولیاء کے ساتھ رہا. تو جب ان کے ساتھ رہنے سے کتا جنت میں جا سکتا ہے تو اولیاء کے ساتھ رہنے سے مسلمان کیوں نہیں جنت میں جا سکتا؟ اللہ تعالی ہمیں ان حضرات کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے اصلاح کی فکر نصیب فرمائے.